ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के संचालन और सशक्तिकरण के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौते पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पश्चिम एशियाई अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर ए.के. मोहपात्रा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक थी और इस बैठक में एक महत्वपूर्ण समझौते को मंजूरी दी गई। दरअसल 13 फरवरी यानी पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जिसकी G20 में घोषणा हुई थी इसके संचालन के लिए एक सहयोग पर हस्ताक्षर किए थे। ये एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है और इस एग्रीमेंट को कल कैबिनेट ने मंजूरी दी। समझा जा रहा है कि इस मंजूरी के बाद या इस समझौते से भारत के संबंध हैं खासतौर पर संयुक्त अरब अमीरात या मध्य पूर्व के साथ उसमें और मजबूती आएगी और जो बंदरगाह समुद्री या जो व्यापारिक संबंध है उसको और ज्यादा प्रगाढ़ करने में इससे मदद मिलेगी। तो ये इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट किस तरह से महत्वपूर्ण है, कैबिनेट का ये मंजूरी किस तरह से अहमियत रखती है और किस तरह से संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व और भारत के संबंध का बढ़ना या मजबूत होना महत्वपूर्ण है, इन सभी विषयों पर आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर ए.के. मोहपात्रा जुड़े हैं। प्रोफेसर मोहपात्रा बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
धन्यवाद।
जो कल कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किए गए इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हम आपसे पहले टिप्पणी चाहेंगे, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के जो बीच आर्थिक साझेदारी है इसके नजरिए से किस तरह से आप इसे आंकते हैं?
पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी का विजिट हुआ UAE को, ये 2015 के बाद कम से कम 7 बार उनके विजिट रहा है UAE को। इस एमिरेट के साथ हमारा जो संपर्क है काफी महत्वपूर्ण है इसी सरकार के अंदर, क्योंकि उनकी एक प्रधानमंत्री के इतने बार वहां जाना, वहां पे जाके उस तरीके से एग्रीमेंट करना, ये जब पहले आप देखोगे उनने के साथ तो संपर्क था ज्यादातर था कि उनसे तेल लेना, पैसा देना, यहाँ से हमारा जुगार करके वहाँ को भेजना, वहाँ से रेमिटेंसेस लेना, ये कहीं के ना कहीं से 7-8 साल में इस रिलेशन का कम्प्लीटली चेंज हो गया है। इसमें केवल उस तरीके से बायर सेलर का रिलेशनशिप नहीं रह गया है, जो पहले सऊदी अरब के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था वो भी हम और आगे चले गए। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है, इसमें हर कुछ चीज आ जाता है, सिक्योरिटी भी आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, ट्रेड आता है, इसके आपके वाणिज्य आता है, इसके बाद वहां से पैसा आता है करीब $9 बिलियन से ज्यादा एमिरेट्स ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया, उनका ये कमिटमेंट है कम से कम $75 बिलियन अगले कुछ साल में इंडिया में इसको इन्वेस्ट करेंगे। फिर यहाँ की जो कंपनी वहाँ पे एमिरेट्स में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो दोनों देश की इतनी घनिष्ठता कभी देखने नहीं मिलता था। मुझे लगता है सबसे बड़ी हमारा जो वैदेशिक नीति का सबसे बड़ी कुछ आप देखोगे अचीवमेंट ये है कि हम एमिरेट्स के ऐसे दोस्ती बनाए, मुझे लगता है तीसरा कंट्री नहीं है इस तरीके का रिलेशन हो, तो दोनों कंट्री का अंदर इस तरीके का रिलेशन होना, इस तरह का डेप्थ इसमें आना, ये ऐतिहासिक है। उसके साथ साथ G20 मीटिंग हुआ था जो एक इंडिया मिडल ईस्ट एंड यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो एक रखा गया था प्रोजेक्ट, सब लोग वहां पे सहयोग किए, सबने उसके माना, उसके चलते हुए फरवरी महीना में जब प्रधानमंत्री मोदी जी का विजिट था उसके लिए तैयार हुआ कि एक इंटर गवर्नमेंटल एक फ्रेमवर्क बने, दोनों कंट्री पहले शुरुआत करेंगे, क्योंकि बॉम्बे की जो जापानी का अंदर जो शिप जाएगा पहले ही जाएगा एमिरेट्स को, एमिरेट्स से फिर जाएगा ट्रेन के द्वारा सऊदी अरबिया, सऊदी अरब से फिर जाएगा जोर्डन, जोर्डन के बाद इसराइल, इसराइल के जो हाइफा पोर्ट से फिर यूरोप के अंदर जाएगा। तो पहला जो पॉइंट इंडिया के लिए ये है UAE, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये कमिटमेंट दिया गया कि पहले अमेरिका और इंडिया मिलकर देखेंगे कौन सा जगह इन्वेस्टमेंट हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, पोर्ट बनाने का, ये दोनों कंट्री दोनों मिलकर इसको इनिशिएटिव लिए है आगे बढ़ने का, जिसको हम IMF कहते हैं। देखिए IMF जो है ना ये दोनों एक कंटिनेंट का, खाली देश का नहीं है, वो एशिया और यूरोप के अंदर एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, अर्थनैतिक इंटीग्रेशन होगा जो पहले इस तरह का नहीं था। एक्सपर्ट कहते हैं कि 40% जो ये शिपमेंट होगा इंडिया से ईस्टर्न पोर्ट ये साइड से, तो वो 40% का जो टाइम पहले लगता था वो कम हो जाएगा, तो इसमें काफी ज्यादा इसी दोनों देश को बेनिफिट होगा।
आपने जैसा कि चर्चा की किस तरह से बीते वर्षों में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंधों में मजबूती आई है, अगर भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के महत्व पर हम आपसे और ज्यादा चर्चा करना चाहें, इस संबंध में आपको क्या लगता है कि कैसे ये आर्थिक गलियारा खासतौर पर भारत और मध्य पूर्व में जो क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी है उसको और ज्यादा मजबूत करेगा, और पहले से ही हम सभी जानते हैं कि एक स्थापित समुद्री मार्ग है, व्यापार है, इसके अलावा इसमें जैसा कि आपने बताया रेल मार्ग को शुरू करने की भी एक योजना है, तो उससे किस तरह से एक लॉजिस्टिक की आवाजाही में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी?
देखिए, लॉजिस्टिक के कारण से दोनों देश की इन्वेस्टमेंट रहेगा, इसके साथ सऊदी अरब में भी ज्वाइन करेंगे कि वहाँ पे जो जमीन के ऊपर जो आपकी जो सामान जाएगा, ये ट्रेन पे हो जो रेलवे मार्ग आप कह रहे हैं, तो वो रेलवे मार्ग की जो उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, पहले बैठ के उनको प्रोजेक्ट जो दिखाना पड़ेगा कौन से एरिया में जाना पड़ेगा जहाँ पे की कम खर्चा होगा लेकिन ज्यादा फायदा हो, और यहाँ पे कहने की डेजर्ट आपको मिल जाएगा, जैसे सऊदी अरब के अंदर अपने ट्रेन लाइन जाएगा वहाँ से क्या खर्चा आएगा, कौन सा जगह पे हाईबिलिटी बन सकता है, ये तीनों तरह कंट्री को पहले मिलकर इसमें चर्चा होगा, इसमें लिखा होगा आप देखिए एग्रीमेंट एक्सप्लोर पोटेंशियल, तो इसका मतलब है ये दोनों कंट्री कहीं ना कहीं इनिशिएटिव ले रहे हैं। देखिए पहले इस तरह का एग्रीमेंट बनता था यानी मल्टीलेटरल हो बायलेटरल हो, लेकिन ये बहुत जगह पेन एंड पेपर में रह जाता था, लोगों को दिखाने के लिए ऑफिशियल स्टेटमेंट हो जाता था कि हमने ये सब किया, लेकिन कभी कभी इम्प्लीमेंट नहीं होता था, इम्प्लीमेंट हो तो कोई प्रोग्रेस दिखता नहीं हो। देखिए सितंबर से लेकर मार्च के अंदर क्या हवा पे विस्तार का प्रोजेक्ट नहीं हुआ, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ये जो है प्रधानमंत्री का सबसे बड़ी चीज है कि जो चीज हम कहते हैं उसको हम भी इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। इसमें काफी जगह बाधा आएगा, उसमें आपकी धन को एक्विजिट करना पड़ेगा, कैपिटल को, फिर इसमें बैठ के उनको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, कौन से इलाका में ये ट्रेन लाइन जाएगा, कहाँ पे खत्म होगा, चारों कंट्री को मिलकर इसको फिर एग्रीमेंट जाना पड़ेगा, इसके बाद कौन सा कंट्री कितना फंड उसको कंट्रीब्यूट करे ये भी उनको डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये जो ट्रेन लाइन बनेगा इसमें काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है, तो सारे कंट्री मिलकर इसको करेंगे, यूएई इंडिया उस पर लीड लेंगे, इसके बाद कौन से लोग इस पर काम करेंगे, हमारे पास एक प्रोडक्टिव लेबर फोर्स है वो भी यूएई पे काम करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो लोग मिलकर इस तरीके से रेलवे लाइन को आगे बढ़ाएंगे, फिर क्योंकि खर्चा देने वाले दो तीन कंट्री कर सकते हैं, जॉर्डन के पास इतना सारे कैपिटल है नहीं, आपके है यूएई देंगे, सऊदी अरब देंगे, और इंडिया इसमें टेक्नोलॉजी देगा, और इसके बाद हम यूरोप से वेस्टर्न कंट्री से टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक कलेक्टिव मल्टीलेटरल प्रोजेक्ट है और बेसिकली फोकस करता है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, चारों चीज पे। मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक इसीलिए है, ये जो लाइन जाएगा ये यूरोप के साथ जुड़ेगा, ये कभी इस तरह का हुआ नहीं था।
कई वैश्विक चुनौतियां या संकट के चलते हमने देखा है कि जो हमारी सप्लाई चेन है विश्व की या पूरा नेटवर्क है वो उस पर असर होता है, और ऐसे में हमारे सामने एक विस्तृत आर्थिक गलियारे का एक कॉन्सेप्ट है अब जिसकी रूपरेखा है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से एशिया, यूरोप, मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया का या पूरा ये परिदृश्य है इससे एक परिवर्तनकारी एकीकरण हो सकेगा, और किस तरह से इससे दुनिया की एक सबसे बड़ी बेहतर आपूर्ति श्रृंखला बन पाएगी, और क्यों जरूरी है इस तरह की एक आपूर्ति श्रृंखला या इस तरह के नेटवर्क का डेवलप होना?
एक टाइम में ये ज्यादातर अपने ही जो ऑयल और गैस के ऊपर निर्भर थे तो उनको ही बेच के उनको एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, इस पे उनको पैसा मिलता था, उसी पे अपना चलाते थे। उन्हीं देश को पता चल गया कि ये जो खाली ऑयल और गैस पे अपना इकोनॉमी जो है बहुत दिन तक डिपेंडेंट नहीं हो सकता है। संसार में देखिए ऑल्टरनेटिव भी चीज आ रहा है, अभी आपको इलेक्ट्रिकल कार आ गया, ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि ये संसार की जो डिपेंडेंस था पहले ऑयल पे और गैस पे वो कम हो रहा है। पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया और एमिरेट अपने डाइवर्सिफिकेशन शुरू की है कि ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट कम से दूसरे की तरफ इकोनॉमिक सोर्स ढूंढा जाए। जब ये चेंज हो रहा है, अभी आपको पता है सऊदी अरब किस तरीके का रिफॉर्म्स हो रहा है, इस तरीके यूएई ऑलरेडी शुरू कर दिया कि भाई कैसे आप इन्वेस्टमेंट लाए, उनके पास जो एक कहते हैं कि सॉवरन फंड होता था, एक ज्यादा पैसा होता था जाके विदेश को इन्वेस्ट करते थे, तो इंडिया चाहते कि वो जो सऊदी अरब यूएई के पास अमीरात के पास जो सॉवरन फंड है ये भी कहीं ना कहीं हमारा देश में इन्वेस्टमेंट हो, उसमें इसी देश को भी फायदा होगा। तो बहुत बड़ी चीज हमारा जो है कि वहां के जो पैसा है ये इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट हो हर जगह पे, तो उनके भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडिया के अंदर। इस तरीके का चेंजेस उस देश में हो रहा था, इसी मुहूर्त में हमारा एक पॉलिसी चेंज होता है। पॉलिसी चेंज होता है, पॉलिसी कामयाब होगा जब आपके पास एक स्टेबल सरकार हो, एक डायनामिक लीडरशिप हो देश के अंदर। ये दोनों चीज है जो मौका की अपॉर्चुनिटी हमको मिला, उसको हम किस तरीके एडवांटेज लेते हुए हम आगे बढ़े उन देश को साथ में देते हुए, वो जो चाहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ कि कभी भी मल्टीलेटरल प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है जहाँ पे एक विश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो। हमारा सरकार ने विश्वास उनका अंदर क्रिएट किया, इसीलिए आप देखोगे मोदी जी जब भी जाते मुझे लगता है कभी भी जो कहते एमिरेट के जो प्रेसिडेंट वो कहते ठीक है कर लो, हर चीज पे उनके तरफ से कोई मुझे ला नहीं मिलता है। कहते हैं जो कॉन्फिडेंस है, उनके जो विश्वास है कि इंडिया जो काम कर रहा है सबका भलाई के लिए, और इसमें कहीं ना कहीं इंडिया के अपना कोई इंटरेस्ट जैसे नहीं है कि जैसे दूसरे कंट्री जैसे अमेरिका करता था पहले कोल्ड वॉर के बाद, इससे पहले ब्रिटेन करता था, कि अभी चाइना जिस तरीके से पॉलिसी प्रस्तुत करता है कि इंडिया के सबको लेके सबकी कलेक्टिव इंटरेस्ट सबकी इंटरेस्ट को सार्थ कैसे हो। ये सारे प्रोजेक्ट को देखा जाना चाहिए कि जबकि समय चेंज हो गया है, जिस तरह का अपना प्रायोरिटी बदल गया है, तो इस पे हमको क्या करना चाहिए। करना चाहिए कि सबकी ग्रोथ हो, जिसको कहते हैं शेयर प्रॉस्पेरिटी, सबको मिलकर अपना जो उसका बेनिफिट का फायदा लिया जाए, और इस बेनिफिट का फायदा लेने में कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट उस एरिया पे जहां का आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, तो इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है। दूसरी बात है कि ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, इस सबके ही फायदा होगा। तीसरी बात है कि जो पहले काफी ज्यादा समय लगता था, जिसमें काफी ज्यादा दिक्कत होता था, वो दिक्कत समय में अगले 15-20 साल में काफी कम हो जाए।
जैसा कि आपने भी चर्चा की कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो संबंध है उसके दायरे बढ़े हैं, जिसमें निवेश के बढ़ते दायरे को देखा है, अलग अलग समझौतों पर दोनों देशों के बीच आपसी साझेदारी को बढ़ते हुए देखा है, और जब भारत का या संयुक्त अरब अमीरात के एक दूसरे के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के देश में दौरा करते हैं, तो इसमें एक अलग साझेदारी में मजबूती हमने देखने को मिली है। एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। हाल ही में जैसे संयुक्त अरब अमीरात निवेश मंत्रालय और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल बुनियादी ढांचे और तकनीक के मामले में भी एक समझौते सहयोग पर हस्ताक्षर किए, जिससे कि आपस में जो डिजिटल प्रौद्योगिकी की तकनीक है या कुशलता है उसको एक दूसरे के साथ साझा किया जाए। तो अब जो दायरे बढ़ रहे हैं साझेदारी के, वो कैसे महत्वपूर्ण है, सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि निवेश और तमाम तरह के जो दूसरे क्षेत्र हैं उसकी भागीदारी को देखा जा रहा है, वो कैसे महत्वपूर्ण है विश्व पटल पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों के लिहाज से।
आपने सही कहा है, जैसे हमारा जो भी पॉपुलर UPI हो गया, रूपे हो गया, डिजिटल जो था वो उसपे भी दोनों कंट्री के अंदर एग्रीमेंट था। सबसे बड़ी चीज आप मेंशन ली के जो भारत मठ बनना, वहाँ पे ये कि आपने जितने सारे प्रोडक्ट एक प्लेटफॉर्म में रखना, लोग उस पर आपने जो ट्रेडर है जो बिजनेस करने वाले उस पर अपना सिलेक्ट करेंगे, बड़ी बड़ी माइलस्टोन है। मतलब कभी भविष्य में किसने इस तरह का सोचा नहीं था कि दोनों कंट्री का इस तरह का रिलेशनशिप बन सकता है। मैं जो बात आपको कहा कि विश्वास और भरोसा दोनों चीज चाहिए। कोई देश हमारा देश में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, $10 बिलियन की $75 बिलियन नहीं रखेगा, आपको ऑयल नहीं देगा, जिसको आपको कहते हैं ना कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, कि आपके कभी इमरजेंसी आ जाए, कभी वार हो गया, कोई डिजास्टर हो जाएगा, इधर उधर ना भागे, आपके पास सफिशियंट ऑयल रिजर्व रहे तो देश भी चलता रहे। तो ये सारी में भागीदारी आप देखेंगे एमिरेट्स की है, और ये दोनों देश के जो इतने गार्ड रिलेशनशिप अभी जो संपर्क बना है, मुझे लगता है कि ये एक एग्जांपल है बहुत देश के लिए। और मुझे नहीं लगता है कि भाई अमेरिका ना सोच सकते, ना चाइना सोच सकता है, कि ग्रेट ब्रिटेन पहले सोच सकता है कि भाई इस तरीके से रिलेशन बन सकता है केवल शेयर इंटरेस्ट में ना और कुछ है। दोनों कंट्री का अंदर जो उस तरह का अंडरस्टैंडिंग है, दोनों देश के अंदर जो संपर्क एक जिसको कहते हैं ना क्वालिटेटिव चेंजेस हो रहा है इस तरीके से। कभी हमारा संपर्क दूसरे कंट्री के साथ मैं खाली सोच सकता हूँ सोवियत यूनियन के साथ, इसके बाद कोई दूसरा देश है जिसके साथ इस तरह का संपर्क बन रहा है वो है एमिरेट आज के दिन में। तो ये एक एग्जांपल है दूसरे कंट्री के साथ। सऊदी अरब के साथ रिलेशन तो बनी ही रहा, ओमान का साथ फिर अच्छा खासा रिवाइव हो रहा है, वहाँ का बहरीन है, तो सारे देश के साथ अपना संपर्क बन रहा है। आज के दिन में देखोगे सारे कंट्रीज है वहाँ पे जो खाड़ी देश में, सबके साथ हमारा रिलेशन बन रहा है। एरिया के साथ आपका रिलेशन बनता है, बैक टू जो मिडल ईस्ट का और वेस्ट एशिया जिसको कहते हैं, वहाँ पे रिस्क है, मैं ये नहीं मना कर सकता, तो मैं नहीं कहता हूँ कि रिस्क नहीं है। जहाँ पे इस तरह का रिलेशन बनेगा, दूसरे जो कंट्री है उनके अंदर कहीं ना कहीं इंडिया की तरह एक एटीट्यूड उसको व्यवहार में कहीं ना कहीं परिवर्तन आ सकता है। कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया वहाँ पे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर बने, इंडिया धीरे धीरे करके मध्य एशिया में पेनिट्रेट करे, आपके पास इस तरीका से कुछ प्रोजेक्ट हो जो उनके बेनिफिट करे, खाली सिक्योरिटी प्रदान ना करे, उनको भी अर्थनैतिक बेनिफिट दे, वो लोग भी आपके साथ रहेंगे, एक प्रॉस्पेरिटी बनता है तो वहाँ के लोग जो आपको एक्सेप्ट करेंगे। हमारा जो सोच है देश का कि सबकी प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव कभी नहीं रहा कि जैसे अमेरिका की चाइना कहे कि वहाँ पे जाके आप अपना प्राइमेसी, आपकी जो डोमिनेशन वहाँ पे एस्टेब्लिश करें। हम चाहते हैं सबके साथ मिलकर ही काम करें।
बहुत धन्यवाद प्रोफेसर महापात्रा, आप कार्यक्रम में जुड़े और विषय पर आपने अपने विचार रखे और विश्लेषण दिया।
थैंक यू।
अभी आप सुन रहे थे भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के संचालन और सशक्तिकरण के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौते पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पश्चिम एशियाई अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर ए के मोहपात्रा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।